This is Joint Radio Original Podcast.
वर्ल्ड के सबसे बड़े देशों में से एक है इंडिया, पर इसको महान बनाती है इसकी हिस्ट्री और उससे जुड़े लोग जिन्होंने अपने अपने तरीके से हमारे देश को आगे बढ़ाया। इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे ऐसे ही कुछ फेमस इंडियंस की जिनके बारे में हम सबको पता होना चाहिए।
इस एपिसोड में हम जिन फ्रीडम फाइटर की बात करेंगे उन्हें ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट भी कहा जाता है। जब इंडिया के बड़े लीडर्स एक बहुत ही प्रोमिनेंट मूवमेंट में आ नहीं पाए, तब उन्होंने उस मूवमेंट को लॉन्च करने का जिम्मा उठाया था। एक ऐसी फियर्स फ्रीडम फाइटर जो इंडिया की आजादी के लिए कई बार जेल गई, अरुणा आसिफ अली। इनका जन्म 16 जुलाई 1909 को पंजाब के कालका में हुआ था। इनका बर्थ नेम अरुणा गांगुली था। इनके पिता का नाम उपेंद्र नाथ गांगुली था और वो एक रेस्टोरेंट चलाते थे। इनकी माताजी का नाम अम्बालिका देवी था। इनकी पूरी फैमिली काफी पढ़ी लिखी थी और उनके कनेक्शन ब्रह्मो समाज से थे। अरुणा की स्कूलिंग हुई लाहौर और नैनीताल से। ग्रेजुएशन के बाद वो कोलकाता में पढ़ाने लगी और 1928 में उनकी शादी हुई इंडिया के फेमस बैरिस्टर आसिफ अली से। आसिफ अली इंडियन नेशनल कांग्रेस के सीनियर मेंबर थे। ये वही अकम्प्लिश्ड लॉयर थे जिन्होंने लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह की तरफ से केस फाइट किया था। वो टाइम कुछ अलग ही था और उस टाइम में रहने वाले लोगों का जज्बा भी। सभी लोग, उनका पूरा परिवार फ्रीडम मूवमेंट में इन्वॉल्व रहता था। इसीलिए 19 इयर्स की एज में आसिफ अली से शादी करने के बाद अरुणा ने इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में अपने कदम रखे और अपनी शादी के 2 साल के अंदर ही उन्हें जेल हो गई। वो इसलिए कि उन्होंने जोर शोर से सॉल्ट सत्याग्रह में पार्ट लिया था। इतनी एजुकेटेड होने की वजह से और इतने सारे मेन फ्रीडम फाइटर्स के बीच कुछ ही वुमेन फ्रीडम फाइटर्स में से एक होने के कारण उनकी पॉपुलैरिटी इतनी हो गई कि वो ब्रिटिश की नजर में एक थ्रेट की तरह आ गईं। उन्हें अरेस्ट कर लिया गया, फिर 1931 में सिविल डिसोबीडियंस को खत्म करने के लिए लंदन में हुई सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और वहां हुआ गांधी इवेंट एक्ट, जिसमें कई कंडीशंस के साथ एक कंडीशन ये भी थी कि सॉल्ट सत्याग्रह के सभी प्रिजनर्स को रिलीज कर दिया जाएगा। तब ब्रिटिशर्स ने सभी प्रिजनर्स को रिलीज करने का फैसला लिया, लेकिन अरुणा आसिफ अली को छोड़ने से मना कर दिया। पर तब तक उनका करिश्मा ऐसा हो गया था कि जेल में मौजूद सभी वुमेन प्रिजनर्स ने रिलीज होने से मना कर दिया। फिर महात्मा गांधी के इंटरवेंशन के बाद और पब्लिक के मैसिव प्रोटेस्ट के बाद अरुणा आसिफ अली को रिलीज किया गया। ये तो बस शुरुआत थी। ब्रिटिशर्स ने उन्हें 1932 में फिर से अरेस्ट कर लिया। पहले उन्हें तिहाड़ जेल भेजा और उसके बाद अम्बाला में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में भेज दिया। उन्होंने सोचा कि इन सब से अरुणा आसिफ अली का हौसला टूट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि उन्होंने पॉलिटिकली एक स्टेप पीछे ले लिया, वो अंडरग्राउंड हो गई, लेकिन फ्रीडम के लिए उन्होंने अपने एफर्ट्स जारी रखे। जैसे चुप कर रेडियो पर फ्रीडम के लिए अनाउंसमेंट करना, पैम्फलेट छापना और मैगजीन्स में लिखना, उनकी ये सारे काम चलते रहे। पर अभी उन्हें वो करना था जिसकी वजह से देश में आजादी की चाह की ऐसी लहर बहनी थी जिसने ब्रिटिश राज को हिला कर रख देना था। साल था 1942। अरुणा की उस समय उम्र थी 33 इयर्स और इवेंट था क्विट इंडिया मूवमेंट का लॉन्च। इससे एक दिन पहले 8 अगस्त को इंडियन नेशनल कांग्रेस के बॉम्बे सेशन में अगले दिन ग्वालियर टैंक मैदान में तिरंगा फहराकर क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च करने का फैसला किया गया। ब्रिटिशर्स को इस बात का पता चल गया। उन्होंने 8 अगस्त को ही इंडियन नेशनल कांग्रेस के सारे बड़े लीडर्स को अरेस्ट कर लिया। 9 अगस्त को फ्लैग होइस्टिंग के लिए कोई नहीं था, एक वैक्यूम क्रिएट हो गया। अरुणा आसिफ अली समझ गई कि अगर आज ये मूवमेंट शुरू नहीं हुआ तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये स्टेप फेल हो जाएगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। इसलिए बिना हिचकिचाए 9 अगस्त को कुछ साथी फ्रीडम फाइटर्स के साथ ग्वालियर टैंक मैदान बॉम्बे में जाकर उन्होंने बहुत ही बहादुरी से ट्राई कलर को होस्ट किया और क्विट इंडिया मूवमेंट के लॉन्च को अनाउंस किया, जिसके लिए उन्हें नाम दिया गया हीरोइन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। इसके बाद ब्रिटिश पुलिस उन्हें ढूंढने में लग गई और वो फिर से अंडरग्राउंड हो गईं। इंडिया में हर किसी के होठों पर उनका नाम था और ब्रिटिशर्स के पास उन्हें अरेस्ट करने का मिशन। सरकार ने उन पर 5,000 रुपए का इनाम रखा, उनकी सारी प्रॉपर्टी सीज कर ली गई, लेकिन इसका उन पर कोई असर नहीं हुआ। अंडरग्राउंड रहते रहते उन्होंने इनकलाब नाम की मंथली मैगजीन को एडिट करना शुरू कर दिया। वो 1946 तक छुपी रही। फिजिकली वो बहुत कमजोर हो चुकी थी, लेकिन हौसले से अभी भी बहुत मजबूत थी। फिर भी कई बार महात्मा गांधी के कहने पर उनका मान रखते हुए उन्होंने खुद को सरेंडर कर दिया। 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली और 1948 में उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी ज्वाइन कर ली, जिसके बाद वो वुमेन अपलिफ्टमेंट के एफर्ट्स में शामिल हो गईं। 1958 में वो बनी दिल्ली की पहली वुमन मेयर। इंडिपेंडेंस और कंट्री के लिए उनका कॉन्ट्रीब्यूशन इमेंस था, इसलिए उन्हें मिले कई अवार्ड, जैसे इंटरनेशनल लेनिन पीस अवार्ड इन 1964, जवाहरलाल नेहरू अवार्ड फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग इन 1991, 1992 में उन्हें मिला इंडिया सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर द पद्म भूषण, और 1997 में पोस्टमसली उन्हें मिला भारत रत्न। इतना ही नहीं, न्यू दिल्ली में इंडिया गेट के पास एक रोड उन्हें डेडिकेट की गई और उसका नाम रखा गया अरुणा आसिफ अली मार्ग। अरुणा आसिफ अली की लाइफ से हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर सिचुएशन आपको कंट्रोल कर रही हो, कोई रास्ता ना दिख रहा हो, तो अपने कंफर्ट जोन से निकलकर चैलेंजेस को फेस करें और फिर एक्शन लें। तो ये थी अरुणा आसिफ अली की लाइफ से कुछ इंटरेस्टिंग बातें। ऐसे ही और आइकॉनिक इंडियंस के बारे में जानने के लिए सुनिए फेमस इंडियन पर्सनालिटीज ऑल किड्स शुड नो अबाउट पॉडकास्ट के और भी एपिसोड्स।